हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शाम का वक्त, अनय का घर। मनस्वी, मनस्वी क्या कर रही हो तुम? पहले ही 6 बज गए हैं, मुझे भी रेडी होना है। दरवाज़ा कब खोलोगी तुम? अपने ही कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाते हुए अनय बोला। कमरे के अंदर से मनस्वी की आवाज़ में जवाब आया, अभी मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम जाकर दूसरे कमरे में रेडी हो जाओ। अरे हाँ, पता है मुझे तुमने बोला था, और मैं शावर लेकर ही आया हूँ, लेकिन मेरे कपड़े और बाकी सारा सामान इसी रूम में है ना, तो कैसे मैं दूसरे रूम में रेडी हो जाऊँगा? खोलो ना दरवाज़ा, 2 घंटे से दरवाज़ा बंद है, और वो स्टाइलिश भी बुलाए हुए हैं तुमने। इतना ज़्यादा भी रेडी मत हो जाना कि लोगों को लगे आदित्य सुनैना की नहीं बल्कि हमारी एनिवर्सरी पार्टी है। अनय ने दोबारा इस तरह दरवाजे के बाहर खड़े हुए तेज़ आवाज़ में बोला, लेकिन इस बार अंदर से उसे कोई भी जवाब नहीं आया। वो दोनों ही आदित्य सुनैना की एनिवर्सरी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, और अनय के पूछने पर मनस्वी तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई, और उसने सोचा कि आज वो बहुत ही अच्छे से रेडी होगी, लेकिन उसे उतना ज़्यादा हेयर मेकअप नहीं आता, तो उसने अपने लिए पर्सनल स्टाइलिश भी बुलाए हुए हैं और स्पेशल ड्रेस भी ऑर्डर देकर मंगवा लिया है। उसे पता था अगर वो अनय के साथ उसके सामने ही रेडी होगी तो वो इसी तरह का कुछ ना कुछ बोलता रहेगा और उसे डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा वो उसे सरप्राइज भी देना चाहती है अपने नए लुक से, क्योंकि वो बस उसके लिए ही इतनी अच्छी तरह से रेडी हो रही है, और वो चाहती है कि अनय उसे देखकर एकदम ही शॉक्ड रह जाए। अनय को अंदर से मनस्वी की आवाज़ में कोई भी जवाब नहीं मिला तो वो थोड़ा सा मायूस हो गया। आखिरकार वो वहाँ से मुड़कर जाने ही वाला था, तभी एकदम से दरवाज़ा खुला और उसके ऊपर उसके कपड़े और सारे सामान से भरा हुआ एक बैग आकर गिरा। इस तरह से अपना सारा सामान कमरे से बाहर अपने ऊपर आते देख अनय अपनी जगह पर ही रुक गया, लेकिन वो पीछे मुड़कर किसी को देख पाता कि वो सामान उसके ऊपर किसने फेंका, या फिर कुछ भी बोल पाता, उससे पहले ही एक तेज़ आवाज़ के साथ दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अरे ये क्या बिहेवियर है मनस्वी, अब तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है, अनय ने डिसअपॉइंटेड होते हुए थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। हाँ हाँ ठीक है, जो भी समझो, बट जाओ अब जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर तुम ही टाइम लगाओगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, अंदर से मनस्वी ने फिर इतना बोला, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और वो अनय के सामने भी नहीं आई। मायूसी से एक गहरी सांस लेते हुए अनय ने अपने सामने पड़ा हुआ अपना वो सारा सामान और अपने सूट का बैग अपने हाथों में उठाया और उसे लेकर दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ रवि का अपार्टमेंट। रवि उस लड़की को समझाकर अपना अपार्टमेंट बाहर से लॉक करके वहां से गया था, लेकिन उसने इस बार उस लड़की का कमरा लॉक नहीं किया, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से किसी को कमरे में बंद करके रखने में, और आदित्य ने भी उसे खास तौर पर कोई उसे लॉक करके रखने को नहीं बोला था, इसीलिए रवि उसे ऐसे ही घर में छोड़कर चला गया। और वो लड़की रवि जब वहां पर नहीं था तो इधर उधर घूमती हुई सारी चीज़ देख रही थी, और तभी एकदम से दरवाज़ा खुला, रवि वापस आया, और वो लड़की जो वहां पर साइड में रखा हुआ कुछ सामान टच करने ही वाली थी वो एकदम से पीछे हो गई और उसने दरवाजे की तरफ देखा। क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये कोई घूमने की जगह है क्या? ये आराम से एक जगह पर नहीं बैठ जाता तुमसे? उस लड़की को ऐसे वहाँ पर अपना सामान छूते देख रवि थोड़ा सा नाराज़ होते हुए बोला, सॉरी लेकिन ये हैंडमेड है क्या? मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, डेकोरेटिव पीस। उस लड़की ने तुरंत ही सॉरी बोलते हुए रवि से पूछा, क्या करना तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में? बात छोड़ो और ये लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ, इसे पहनकर रेडी हो जाओ, फिर हमें साथ में कहीं चलना है। अपने हाथ में पकड़े हुए वो 2-3 शॉपिंग बैग्स रवि उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला। उस लड़की ने वो बैग अपने हाथ में नहीं पकड़े और अपने हाथ पीछे करते हुए वो अपनी जगह से पीछे हट गई और थोड़ा सा घबराई हुई बोली, हमें कहाँ जाना है? और आपके साथ? लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कहीं भी जाऊँगी तो वो दक्ष मुझे ढूंढ लेगा और फिर मुझे वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाएगा। नहीं प्लीज़, मुझे यहाँ पर ही रहने दीजिए, मुझे यहाँ से बाहर कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर मेरी सहेली अपने होम टाउन से वापस आ जाएगी तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी रहने। अरे बस करो, पिछले 3 दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ कि तुम्हारी सहेली वापस आएगी तो तुम उसके घर चली जाओगी। ठीक है चली जाना जब आ जाए तो, लेकिन जब तक यहाँ पर हो तब तक तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़ने में ज़्यादा खतरा है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें बचा पाऊंगा और तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ट्रस्ट मी, आदित्य सर ने पहले ही सारे अरेंजमेंट कर लिए होंगे। रवि ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की और दोबारा से वो बैग उसकी तरफ बढ़ाया तो इस बार लड़की ने उसके हाथ से वो बैग ले लिया और बहुत ही मासूमियत से रवि की तरफ देखते हुए बोली, कौन? आदित्य? आदित्य सर कौन?
उस लड़की का ये सवाल सुनकर रवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था कि वो लड़की आदित्य का नाम भी नहीं जानती है। उसे लगा था कि वो लड़की आदित्य को जानती होगी या फिर अब तक उसका नाम तो जान ही गई होगी। रवि को उस लड़की से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। रवि ने उस लड़की की बात का जवाब देते हुए कहा, आदित्य सर, तुम आदित्य सर को नहीं जानती जिनसे तुमने हेल्प मांगी थी, और वही तो तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं। चलो हमें उनकी पार्टी में ही चलना है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। रवि की ये बात सुनकर उस लड़की ने जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाया, और फिर रवि बाकी का सामान लेकर वहां से आगे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। और तभी उसके मोबाइल पर शिवानी का कॉल आया और वो उसे कॉल पर बात करने लगा। उस लड़की ने भी अपना वो सारा सामान और सारे बैग उठाए जिसमें रवि उसके लिए सामान लेकर आया था, और वो सब लेकर वो भी अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो रवि ने अपने कमरे से झाँक कर उस लड़की के कमरे की तरफ देखा, और दरवाजा बंद देख कर वो वापस अपने कमरे के अंदर चला गया।
अक्षत का बंगला। विवान, थोड़ा जल्दी कर ले, पार्टी खत्म होने के बाद नहीं पहुंचाना हमें, और मैंने तुझे 6 बजे बोला था लेकिन अभी 7:30 बज रहे हैं, कहाँ रह गया तू? अक्षत ने विवान को आवाज़ लगाते हुए कहा, क्योंकि वो तीनों साथ में ही जाने वाले हैं, क्योंकि विवान वहां पर किसी को इतना नहीं जानता और वो अब तक तैयार नहीं हो पाया है। जबकि अक्षत और नैना पिछले 10 मिनट से एकदम रेडी होकर हॉल में खड़े हैं, और वो दोनों ही साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही मैचिंग करके डार्क मैरून कलर की कपल ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें अक्षत का ब्लेजर डार्क मैरून कलर का है और उससे ही मैच करता हुआ नैना का ऑफ शोल्डर गाउन है, और उस गाउन की वेस्ट पर सिल्वर स्टोन का वर्क है, जिसके साथ उसने मैचिंग लिपस्टिक और आई मेकअप के साथ सिल्वर कलर की हील में नैना बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग रही है वो डायमंड ज्वेलरी जो बड़े से इयररिंग्स और एकदम छोटी सी हार्ट शेप के लॉकेट वाली चेन उसने उस गाउन के साथ पैरअप करके पहनी हुई है। आज नैना ने बालों को काल किया हुआ है और बालों में सिल्वर स्टोन वाली हेयर एसेसरी भी लगी हुई है जो कि उसके लुक को बहुत ही कम्प्लीट और गॉर्जियस बना रही है।
इसके अलावा हाथ में चौड़ा सा डायमंड ब्रेसलेट भी है, और उस पर अक्षत ने जो उसे डायमंड रिंग दी थी वो भी नैना ने बहुत ही शान से अपनी उंगली में पहनी हुई है, क्योंकि वो रेड कलर की रोज वाली रिंग भी उसके ड्रेस से काफी मैच हो रही है। इसके अलावा हाथ में चौड़ा सा डायमंड ब्रेसलेट भी है, और उस पर अक्षत ने जो उसे डायमंड रिंग दी थी वो भी नैना ने बहुत ही शान से अपनी उंगली में पहनी हुई है, क्योंकि वो रेड कलर की रोज वाली रिंग भी उसके ड्रेस से काफी मैच हो रही है। और जब से वो ऐसे रेडी होकर वहां पर आई है, अक्षत तो एकदम दीवानों की तरह उसकी तरफ ही देख रहा है, और 4-5 बार तो उसकी तारीफ भी कर चुका है, जबकि वो खुद भी कम हैंडसम नहीं लग रहा। अक्षत की मुंह से अपनी तारीफ सुनना नैना को हमेशा ही अच्छा लगता है, और वो अपनी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश है, उसका दिल भी धड़क रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर अक्षत पर पड़ी जिसकी शर्ट का कॉलर ठीक नहीं था, तो नैना अपनी जगह से आगे आई और उसने अक्षत की नेक के पास अपना हाथ रखा और उसके कॉलर को ठीक करने लगी। ऐसा करते हुए वो अनजाने ही अक्षत की एकदम नजदीक आ गई है। उसे अपने इतना करीब देखकर अक्षत पहले तो थोड़ा सा हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि नैना उसकी शर्ट का कॉलर ठीक कर रही है, जो कि उसे खुद से देखने पर नजर नहीं आया था। अक्षत को ये बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी शरारत सूझी, तो उसने नैना की कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने और नजदीक करते हुए बोला, इरादे क्या है मैडम, पार्टी में जाने का मूड नहीं है तो बोलो, रूम में चले। इतना बोलते हुए अक्षत अपना चेहरा नैना के चेहरे के एकदम नजदीक लाया और उसके कान पर लगभग अपने होंठ रखते हुए शरारत से ये बात बोला। अचानक से ऐसे अक्षत के होठों का टच अपने कान पर फील करके नैना के पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगी और उसकी आंखें एकदम से बंद हुईं। लेकिन फिर तुरंत ही उसे सिचुएशन का एहसास हुआ और साथ ही ये भी समझ आ गया कि अक्षत बस उसे टीज कर रहा है, तो वो अक्षत के कंधे पर हल्के से मारते हुए बोली, स्टॉप इट अक्षत, मैं बस ये तुम्हारी शर्ट का कॉलर ठीक कर रही थी, तुम तो ध्यान से पहनते नहीं हो, हमेशा ही कुछ ना कुछ रह जाता है, नैना ने एकदम सीरियस होकर ये बात बोली। तो अक्षत हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके चेहरे से थोड़ा दूर होता हुआ उसने अपना चेहरा नैना के सामने किया और बोला, तुम हो ना मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक करने के लिए, तो बस मुझे कोई टेंशन नहीं है। अक्षत की ये बात सुनकर नैना ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और बोली, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ऐसे ही। इतना बोलते हुए उसने अपनी बाहें अक्षत की गर्दन में डाल दी और उसके चेहरे की तरफ ही देखने लगी। अक्षत की नजरें भी नैना के होठों पर आकर टिक गई थी और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और कुछ देर के लिए जैसे कि भूल ही गए कि वो दोनों रेडी होकर पार्टी के लिए निकल रहे हैं। उनके होठ जैसे ही एक दूसरे के होठों से टच हुए नैना की पलकें हल्की सी झुकी और वो दोनों इससे ज्यादा आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी पीछे से विवान की आवाज आई, चलो रेडी हो गया मैं, और ये आप दोनों क्या कर रहे हो? ओह, कुछ और ही प्लान बन गया क्या इतनी देर में? सॉरी सॉरी, बट लगता है अब मुझे अलग जाकर ही रहना पड़ेगा। विवान की आवाज सुनकर अक्षत एकदम ही इरिटेट हो गया और उसने घूरते हुए लगभग खा जाने वाली नजरों से विवान की तरफ देखा और नैना एकदम ही उससे दूर हो गई।